नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यातक TCS ने समर्पित जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच मुहैया कराने के लिए Amazon वेब सर्विसेज के साथ गठजोड़ की सोमवार को घोषणा की। टाटा समूह की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने दुनिया भर में 1,00,000 कर्मचारियों को GenAI से संबंधित बुनियादी प्रशिक्षण दिया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक TCS का AWS आधारित GenAI मंच हर एक उद्योग क्षेत्र के लिए समाधान और सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिम्मेदार AI ढांचे और उसके पेसपोर्ट इनोवेशन हब के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करेगा। AWS Amazon की मांग आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग इकाई है। जेनरेटिव AI ने उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार देने की क्षमता के कारण विश्व स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के सबसे बड़े शेयर धारक केदारा कैपिटल ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना जारी करने के निदेशक मंडल के फैसले का समर्थन किया है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। ये स्पष्टीकरण REL में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की कोशिश कर रहे डाबर के बर्मन घराने के आरोपों के बीच आया है। डाबर ने कहा था कि कथित तौर पर बीमा नियामक IRDA और शेयर बाजार नियामक SEBI के मानदंडों का उल्लंघन किया गया है। REL केयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रवर्तक है और सलूजा इस बीमा कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। केदारा कैपिटल के प्रबंध साझेदार सुनीश शर्मा ने एक बयान में कहा, केदारा केयर हेल्थ इंश्योरेंस का एक गौरवान्वित शेयर धारक है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय में प्रस्तावित सुधारों को लेकर चल रही चर्चा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिनेवा में इस निकाय की एक बैठक के दौरान WTO विवाद निपटान प्रणाली के सुधार पर विचार शीर्षक वाले इस प्रस्ताव को पेश किया गया। जिनेवा स्थित इस अधिकारी ने प्रस्ताव का ब्यौरा न देते हुए कहा, बैठक में भारत ने मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस प्रस्ताव को रखा। इस प्रस्ताव को 24 नवंबर को WTO के सदस्य देशों के बीच प्रसारित किया गया था। WTO के विवाद निपटान के निकाय में सुधार पर प्रस्ताव लाना इस लिहाज से अहम है कि भारत इस सुधार के लिए WTO सदस्यों के बीच औपचारिक वार्ता शुरू करने की वकालत कर रहा है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य भर में उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा संशोधन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यहां राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार शाम बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि संशोधित नीति संचार और कनेक्टिविटी नीति 2017 की जगह लाई गई है। ये 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ मार्ग का अधिकार नियमों का पालन करती है। ये निर्णय दूर संचार क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिसमें फाइबर टू द होम और ओपन एक्सेस नेटवर्क जैसे अभिनव कारोबारी मॉडल शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि ये संशोधित नीति सड़कों के किनारे पाइप के माध्यम से 5G सक्षम बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करती है। G20 समूह के शेरपा अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए अपनी वृद्धि दर में तेजी लाने और वैश्विक दक्षिण के साथ साझेदारी में काम करने की जरूरत है। कांत ने कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2 दशकों को भारत की वृद्धि गाथा के लिहाज से सबसे अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के रोडमैप के हिसाब से भारत वर्ष 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला विकसित देश होगा और इसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $18,000 होगी। पारिवारिक विवाद में फंसे रेमंड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने अपने कर्मचारियों और निदेशक मंडल को कामकाज सामान्य ढंग से चलाने का आश्वासन देते हुए कहा कि वो इसके सुचारू संचालन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। कुछ दिनों पहले पत्नी नवाज से अलग होने की घोषणा करने वाले जाने माने उद्यमी सिंघानिया ने रेमंड के निदेशक मंडल के सदस्यों और कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने ईमेल में कहा है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में आ रही मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, अपने परिवार की गरिमा बनाए रखना मेरे लिए सबसे ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रेमंड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर वो कंपनी के सुचारू संचालन और इसके कारोबार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। DTH सेवा देने वाली कंपनी डिश टीवी ने निदेशकों के नियुक्ति के लिए शेयर धारकों की मंजूरी लेने के लिए 22 दिसंबर को एक असाधारण आम बैठक बुलाई है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने सोमवार को हुई बैठक में इस पर विचार किया और 22 दिसंबर 2023 को अपने इक्विटी शेयरधारकों की ईजीएम बुलाने की मंजूरी दे दी। डिश टीवी ने बैठक बुलाने के कारणों का खुलासा किए बिना शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों से आयोजित की जाएगी। संपर्क करने पर कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि ईजीएम निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी लेने के लिए बुलाई गई है और विवरण उचित समय पर साझा किया जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।